તારીખ 5/9/1998 શ્રી સમયસર કલશ ટીકા શ્લોક નંબર 23 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 114.
અબ પ્રશ્ન ઉઠાયા હૈ કે અનુભવ કિસકો આતા હૈ, એસા શરીર સે ભિન્ન જ્ઞાનમય આત્મા કા भिन्न अनुभव किसको होता है कि तत्व हो कौतूहली सन तत्व मैंने शुद्ध चैतन्य वस्तु शुद्ध आत्म तत्व को ही यहाँ तत्व बोला गया है। उसका कौतूहली स्वरूप को जोने को चाहता है, देखने को चाहता है, ऐसा हुआ ऐसा होता हुआ क्या बोले, क्या कहा? देखो, शुद्ध चैतन्य स्वरूप को देखने को अनुभव करने को चाहता है, ऐसा होता हुआ। सुनने को चाहता है, जानने को चाहता है, पढ़ने को चाहता है, वो बात नहीं लिया। देखने को मैंने अनुभव करने को चाहता है, उसकी बात है। हिंदी क्या क्या है? हिंदी ग्रंथ है किसके, किसी के पास? कलश टीका हिंदी नहीं है ना? यहाँ कौतूहल शब्द का ऐसा अर्थ ले लिया है, अपूर्व जिज्ञासा पूर्वक जो देखना चाहता है, अनुभव करना चाहता है, उसको तत्व का कौतूहली बोलने में आया है। अनुभव किसको होता है? जिसको अपूर्व जिज्ञासा और अपूर्व कौतूहल होता है उसको। और कैसा हो करके, कथम अपि मृत्वा, मर करके भी ऐसा अनुभव करो। देखो, आचार्य महाराज की आज्ञा है मर करके भी, यानी मृत्यु के प्रसंग को मुख्य मत करो, दूसरे प्रसंग को तो मुख्य करने का सवाल होता ही नहीं, लेकिन मृत्यु के प्रसंग को भी मुख्य मत करो, उसको भी गौण करो, ऐसी बात है। उतनी तैयारी होती है अभिप्राय की, तब तो काम होता है। आपको एक मृत्यु का नहीं, अनंत जन्म मरण का नाश करना है, और इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त करनी है तो इसकी कीमत आपको कितनी चुकानी है वो तो बताइए। माल कोई मुफ्त में लेना है क्या है? या पूरी कीमत चुकानी है? आपकी नियत को देख लो, आपकी प्रामाणिकता को देखो कि आपको जितना माल है उतनी कीमत चुकानी है, या माल तो ज्यादा लेना है और कीमत कम चुकानी है, हैं? ऐसा कभी करना नहीं चाहिए। हमारी ऐसी प्रामाणिकता होनी चाहिए कि जितना पैसा दे उतना माल की अपेक्षा रखे, ज्यादा नहीं रखे। लोग क्या करते हैं कि अपने जान पहचान वालों के पास जाते हैं खरीद करने के लिए, और बोलते हैं कि भाई आप तो हमारे जान पहचान वाले सगे हैं, समधी है, तो हमको कम भाव में माल देना। क्या बोलते हैं? हमारे से पैसे कम लेना। ऐसी अपेक्षा हमें कभी नहीं रखनी चाहिए। हमको ऐसा कहना चाहिए कि जितना आप दूसरों से भाव लेते हैं पैसे लेते हैं, उतना ही हमसे लेना, बिल्कुल कम नहीं लेना है। हमारी ओर से ऐसा भाव होना चाहिए, बस इनकी ओर से कम लेने का भाव हुए वो इनका इनकी बात है, हमारी ओर से ये बात होनी नहीं चाहिए। संबंध बता करके उसका दंड देना योग्य है, हैं? क्या करना है, दंडा लगाना? आप हमारे जान पहचान वाले, दो एक दंडा और लगा देंगे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ये प्रमाणिकता की हद है, पूरे पैसा दे करके माल लेना चाहिए, अधूरा दे करके कम दे करके नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ हमको अनंत जन्म मरण का नाश करना है और हमको छोटी मोटी बात में प्रतिकूलता आती है तो हम इस कार्य को गौण कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं और हम इसका विस्मरण कर देते हैं। क्या करते हैं? विस्मरण कर देते हैं। क्या करें, थोड़ा बहुत तो चलता है, फिर उदय आता है तो भूल जाते हैं। ये कोई काम करने का तरीका नहीं है। सबसे बड़ा काम हाथ में लिया है तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी उसको देना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, तब तो कार्य सिद्धि होगी, वरना कार्य सिद्धि होने वाली नहीं है। कैसा हो करके कि कथम अपि मृत्वा, किसी भी प्रकार से किसी भी उपाय से मर करके भी मृत्यु होवे तो हमको मंजूर है, लेकिन हमको ये काम करना है, करना है और करना ही है। ये लोग कहते हैं आज थोड़ा तबीयत अस्वस्थ था इसलिए हम स्वाध्याय में नहीं आए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अस्वस्थ तबीयत हुए तो खास आना चाहिए, क्या खास आना चाहिए? क्यों कि बिस्तर पर लेट रहने से तो परिणाम तो शरीर में ही लगे रहेंगे और स्वाध्याय में आएंगे तो उपयोग शरीर से भिन्न आत्मा है ऐसी बातों में लगेगा। हाँ, शरीर की भिन्नता की बात सुनाई देगी और उस विषय में हमारे परिणाम और हमारे भाव चलेंगे और कोई अधिक कार्य करना चाहेंगे तो प्रयोग करेंगे भिन्नता का, वो बात सुन करके भिन्नता का प्रयोग करेंगे। इस तरह से शरीर की बीमारी को और प्रतिकूलता को मुख्य करके उनको साथ नहीं देना चाहिए, उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए हमें। मर करके भी स्वरूप दर्शन करने का अभिप्राय होना चाहिए, मर करके भी इसका, मर करके भी शुद्ध जीव स्वरूप का अनुभव कर, भावार्थ ऐसा है कि शुद्ध चैतन्य का अनुभव तो सहज साध्य है, यत्न साध्य तो नहीं, मतलब कृत्रिम प्रयत्न से अनुभव नहीं होगा। सहज स्वरूप की रुचि प्रीति और प्रेम बढ़ेगा तो स्वरूप के प्रति परिणाम की दौड़ सहज रूप से चालू हो जाएगी, तब अनुभव होगा। जबरन जबरदस्ती से कोई कार्य करना चाहते हैं तो ऐसा तो कोई कार्य होने वाला है ही नहीं। मर करके भी करो इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हम कृत्रिमता से कोई काम कर सकते हैं, ऐसी बात वहां कहने का अभिप्राय कहने वालों का नहीं है। इसलिए वो स्पष्टीकरण दिया। देखो जब उपदेश की बात आती है तो उसमें इंपरेटिव स्पीच होती है, इंग्लिश ग्रामर में फिगर ऑफ स्पीच भाषा अलंकार बोला जाता है, आज्ञार्थ वचन। आज्ञार्थ वचन की शैली कैसी होती है, तुम ऐसा करो ऐसा मत करो, उपदेश और आज्ञा में ऐसी पद्धति होती है। फिर हमको आशय कैसा समझना चाहिए कि वो सहज है कृत्रिम नहीं है, ऐसा हमको समझना चाहिए, वो साथ साथ कहते हैं। वरना क्या होता है कि एक तो हमारी कर्ता बुद्धि है, परिणामों की कर्ता बुद्धि है, परिणामों में फेरफार करने का हमारा अभिप्राय है, और उपदेश हमको आज्ञार्थ वचन शैली में मिलता है। उपदेश हमको कैसे वचनों में मिलता है, जो आज्ञार्थ है उपदेशात्मक है। तो हमारी कहीं कर्ता बुद्धि हमको दृढ़ करनी है, ऐसा उल्टा हमको नहीं चलना है। हमको समझना चाहिए कि ऐसा कहते हैं फिर भी कार्य तो सहज होता है, कर्तृत्व तो बुद्धि से नहीं होता। मर करके मैंने कहेंगे आगे कि उसका ऐसा कह करके सहज साध्य यत्न साध्य, फिर परंतु इतना कह करके आगे दूसरी पंक्ति में बात आई है, अत्यंत उपादेयपना दृढ़ किया है कि इस कार्य में तुम्हारी अत्यंत उपादेयता की बुद्धि होनी चाहिए। अत्यंत उपादेय है शुद्ध आत्मा का, भिन्न आत्मा का अनुभव अत्यंत उपादेय है, ऐसा कहने का अभिप्राय है। और उसकी अत्यंत उपादेयता को लक्ष्य में रख करके मृत्यु को भी, मृत्यु भी गौण हो जाए, ऐसी तुम्हारी हालत हो जानी चाहिए, ऐसी बात है। वहाँ कहने का अभिप्राय पकड़ना चाहिए, शब्द को पकड़ करके कर्ता बुद्धि को दृढ़ करने की बात तो है ही नहीं, ये तो समयसार है। कर्ता बुद्धि छोड़ाने का तो ग्रंथ है, फिर भी उपदेश में तो उपदेश के तरीके से ही बात आएगी। उपदेश तो उपदेश के तरीके से ही दिया जाता है, और दूसरी भी बात है उसमें कि जीव कर्ता बुद्धि में तो खड़ा ही है, तो वो अपनी भाषा में समझता है, दूसरे की भाषा में नहीं समझता है, तो उनको उनकी भाषा में बताते हैं। परिणाम के कर्तृत्व में खड़ा है तो उसी टोन में बात करते हैं, साथ साथ खुलासा कर देते हैं कि उसमें कृत्रिमता और कर्तृत्व दृढ़ करने का आशय नहीं रहा है, वो ख्याल में रखने की बात है, तो वो अपनी भाषा में जल्दी से समझता है, इसलिए उनकी भाषा में कहते हैं। मलेच्छ को मलेच्छ की भाषा में समझाना पड़ता है, वो संस्कृत भाषा में नहीं समझेगा, ऐसी बात है वो। हाँ, धैर्य से भी काम लेना है, और ये जानना है कि जब हम हमको स्वरूप की रुचि होगी, प्रीति होगी, आत्मा जो गुण निधान है उसका प्रेम जगेगा, तब सहज कार्य होगा। अब शरीर का प्रेम है, भले ही शरीर गंदा है तो भी मोह से उसका प्रेम छूटता नहीं, ये दर्शन मोह का प्रभाव है, कि गंदगी गंदगी नहीं दिखती, ये दर्शन मोह का प्रभाव है। और आत्मा शुद्ध चैतन्य परम पवित्र है, ये तो अपवित्र है, शरीर तो अपवित्र है। हम कितना भी नहाए धोए और कितना भी सुगंधी पदार्थ का प्रयोग करें, फिर भी वो गंदा है, वो हमेशा गंदा ही रहने वाला है। और आत्मा परम पवित्र है और वो हमारा स्वरूप है, वो हमारा स्वरूप नहीं है, फिर भी देखो उल्टी परिस्थिति कैसी है। तो श्री गुरु कहते हैं कि तुम उनका स्वरूप भी देखो, तुम्हारा स्वरूप भी देखो, और फिर स्वरूप की चाह में तुम आ जाओ तो सहज कार्य होने वाला है। चाह के बिना सहज नहीं होगा, इसलिए स्वाध्याय के दौरान सबसे पहले स्वरूप की रुचि बढ़ाई जाती है या कराई जाती है। तो तुम स्वरूप की रुचि में आओ, पर रुचि को छोड़ो और आत्म रुचि को ग्रहण करो, फिर पुरुषार्थ चलेगा और फिर अनुभव आएगा। शुद्ध तो मृत्यु जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये तो फालतू का भय है, सबसे बड़ा भय संसार में, लेकिन है बिल्कुल फालतू का। क्यों? कि कोई आत्मा की मृत्यु हुई नहीं, हमारी भी हुई नहीं और होने वाली भी है ही नहीं। अगर हमारी मृत्यु हुई होती, अगर हम मर गए होते, तो अभी जिंदा कहाँ से होते, अभी हमारी मौजूदगी कहाँ से होती। हमारी वर्तमान मौजूदगी इस बात का सबूत है कि हम कभी मरे नहीं, एक दफे भी मरे, ये बात जरूर हुई है। अनंत बार देह का संयोग हुआ है, अनंत बार देह का वियोग हुआ है, वो बात जरूर है। जिसको जन्म मरण बोलने में आता है, वास्तव में आत्मा की मृत्यु और आत्मा का जन्म होता है, ऐसा कभी बनता नहीं है। और शरीर का भी नाश होता है ऐसे बोलने में आता है, वो भी बात नहीं है। शरीर के परमाणु पर्यायांतर होते हैं, अवस्थांतर होते हैं, कोई एक परमाणु का भी नाश संभव नहीं है। वर्तमान विज्ञान भी यही बोलता है, ये वैज्ञानिक परिस्थिति है कि जगत में किसी भी एक पदार्थ का नई उत्पत्ति हो, एक परमाणु या एक जीव की नई पैदाश हो, ऐसा बनता नहीं। और किसी का सर्वनाश हो, एक परमाणु और एक जीव का सर्वनाश हो, ऐसा भी कभी बनता नहीं। इसलिए हमारी मृत्यु कभी होने वाली है ही नहीं, वो बात जरूर है। आयु पूरा होने से यहाँ रहना नहीं होगा, इस शरीर के साथ रहना नहीं होगा, इस परिवार के साथ रहना नहीं होगा, इस घर में रहना नहीं होगा। हो सकता है कि चूहा बनकर आ जाए, या सर्प बनकर के आ जाए, या मक्खी बनकर के आ जाए, हाँ, या छिपकली बन करके आ जाए, डेढ़ करोड़ी छिपकली माने। लेकिन इस शरीर से, इस संबंध से तो इस घर में रहना बनेगा नहीं। तो हमको ऐसा अभिप्राय बना लेना चाहिए कि ठीक है, ये संयोग तो बदलेगा, जो हम चाहे नहीं चाहे वो बात, कोई चाह के अनुसार बनने वाली, इच्छा के अनुसार तो बनने वाली है ही नहीं, तब फिर कहीं भी रहना हो, रहना तो है ही, मरना तो है ही नहीं, मृत्यु तो हो ही नहीं सकती। जब रहना ही है तो आत्मा में रहना है। कहाँ रहना है? आत्मा में है और आत्मा में रहना है। कहीं भी रहना हो आत्मा में रहना है। परक्षेत्र से हमें क्या मतलब, इधर उधर से हमें क्या मतलब, हम तो कहीं कोई भी क्षेत्र हो बाहर में, हर क्षेत्र में हमको तो आत्मा में ही रहना है, बस बात खत्म। और आत्मा में रहने से सुख शांति है। परक्षेत्र की अपेक्षा से वो फाता वो अनुकूल लगता है, वो प्रतिकूल लगता है, वो फाता है वो नहीं फाता है, फावो न फावो, ये बधु परक्षेत्र अपेक्षित है। आत्मामां जेने रहेवुं छे एने काई वांधो नथी, उसको कोई हरकत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जिसको आत्मा में रहना है उसको कोई दिक्कत नहीं है। करना फकीरी क्या दिलगिरी, सगा सदा मगन मन रहना जी। लिया है ना कृपालु देव, बहुत पढ़ते होंगे, कई लोगों के ग्रंथ पढ़ते होंगे, जहाँ भी जो अच्छी चीज लगी है उठा ली है, कोई भी जगह चीज अच्छी लगी है उसको उठाया है। बस अपने आत्मा में मस्त रहना है, फिर कोई चिंता नहीं। दिलगिरी माने कोई चिंता नहीं हो, और चिंता है वही चिता समान है, चिंता चिता समान जलता है, जैसे कोई चिता में जलता है वैसे चिंता में जलता है जी। परंतु इतना कह करके अत्यंत उपादेयता को दृढ़ किया है कि ये भिन्न आत्मा का अनुभव है, वो अत्यंत अत्यंत उपादेय है, अत्यंत जरूरी है सुख शांति के लिए। इसके सिवा कहीं भी सुख शांति मिलने वाली है ही नहीं। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि अनुभव तो ज्ञान मात्र है, आगे बात आ गई ना ज्ञानानुभव, कि अनुभव तो ज्ञान मात्र है, उससे क्या कार्य सिद्धि होती है, उसमें क्या मिलेगा कार्य सिद्धि, मैंने क्या मिलेगा हमको। अनुभव तो ज्ञान मात्र है, ज्ञानानुभव है, ज्ञान को ज्ञान का अनुभव वही अनुभव है, क्या मिलता है उसमें। कोई तो चीज हमको चाहिए वो तो मिलती नहीं। हमको तो ये चाहिए वो चाहिए, और ज्ञानानुभव में तो वो मिलता नहीं। कई लोग ऐसे कहते हैं, अच्छा सिद्ध भगवान को शरीर नहीं होता तो हमारा मोक्ष होगा तो फिर शरीर नहीं रहेगा तो फिर हम इससे क्या फायदा, खाने पीने का तो रहा नहीं। हाँ कुछ शरीर से कोई काम करने का तो रहा ही नहीं, फिर क्या फायदा। देखो जीव को बिना शरीर सुख और आनंद में रहना होता है, अनंत सुख और अनंत आनंद होता है, कल्पना भी नहीं कर सकते इसकी, ये कैसे हो सकता है। ऐसी बात, ऐसी दृढ़ता हो गई है शरीर के साथ एकत्व बुद्धि में। यहां कोई प्रश्न करता है कि अनुभव तो ज्ञान मात्र है, इससे क्या कार्य सिद्धि होती है, इससे क्या मिलता है। वह भी उपदेश द्वारा कहते हैं, उसका भी उपदेश द्वारा आगे बात करते हैं आचार्य श्री, कि ये न मूर्त्या साकम एकत्व मोहम जगति तेजसी, ये न मैंने जिसके द्वारा, ये न मैंने जिसके द्वारा, जिसके मैंने जिस शुद्ध चैतन्य के अनुभव के द्वारा द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मात्मक समस्त कर्म की पर्यायों के साथ एक संस्कार रूप मूर्तियां मैंने मूर्त द्रव्यों के साथ, मूर्त द्रव्य तीन प्रकार के हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, और भाव कर्मों को भी मूर्त में ले गए हैं। ऐसे समस्त कर्म रूप पर्यायों के साथ एक संस्कार रूप, कैसा एक संस्कार है कि मैं देव हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं तिर्यंच हूं, मैं नारकी हूं इत्यादि रूप, जब जब जो गति में जाता है मैं वैसा ही हूं, ऐसा एकत्व भाव कर लेता है। अभी मैं मनुष्य हूं, कोई कहेगा ज्ञानी के तुम मनुष्य नहीं हो, अरे क्या बात करते हो, मैं मनुष्य नहीं हूं क्या, देखो तो सही मैं प्रत्यक्ष मनुष्य हूं। हाँ नहीं, वो मनुष्य शरीर तुमको दिखता है, मनुष्य के लायक भाव होता है इसका तुमको अनुभव होता है, लेकिन हम तुमको और भी एक बात बताते हैं कि तुम शरीर आदि से भिन्न ज्ञानमय आत्मा हो, शुद्ध चैतन्य तुम हो। तुम तो चैतन्य ढीम हो ना, चैतन्य पिंड हो ना, तुम शरीर पिंड तुम नहीं हो, ऐसा ऐसा लेना है। तो क्या होता है, कैसा है एकत्व संस्कार के चार गति में जैसे जैसे अवस्था होती है उस रूप मैं हूं ऐसा, और मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, अनुकूलता प्रतिकूलता वाला, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं इत्यादि रूप, और मैं क्रोधी हूं, मैं मानी हूं इत्यादि रूप, तथा मैं त्यागी हूं और गृहस्थ हूं इत्यादि रूप। देखो क्या ले लिया, हाँ मैं यति हूं, मैंने त्यागी हूं और मैं गृहस्थ हूं इत्यादि रूप, ऐसी प्रतीति, ऐसा है मोह अर्थात विपरीतपणा, जिसको वो अनुभव होते ही तुरंत, वो अनुभव होते ही तुरंत हे जीव तू अपनी बुद्धि से छोड़ेगा। देखो अनुभव होने पर तुमको क्या होगा, सब तेरा छूट जाएगा, जितने भी मिसकॉन्सेप्ट हैं हजारों प्रकार ले लिए हैं, मैं इसका वो हूँ, इसका वो हूँ, इसका वो हूँ, ये गांव वाला हूँ, ये देश वाला हूँ, ये इलाका वाला हूँ, मैं तो गुजराती हूँ, हैं गुजरात में रहने वाला मैं गुजराती हूँ, मैं बम्बई में रहने वाला महाराष्ट्रियन नहीं, मैं तो गुजराती हूँ। हाँ जहाँ भी रहता है जैसे कर्म पर्याय आती है वैसे वो अपने को मान लेता है, बहुत बड़ी गड़बड़ है, वो विपरीतपना है। वो अनुभव होने पर सहज अपनी बुद्धि से छूट जाता है। थोड़ा विषय तो विस्तार करने लायक है, तो यहाँ से फिर कल के स्वाध्याय में लेंगे, यहाँ तक रखे, समय हो गया।